राघवेंद्र त्यागी जी को लेकर मेले पहुंच चुका था, साथ में उसका परिवार भी मौजूद था। उधर वैदेही और देव भी उसी मेले में आए हुए थे। मेले में हर तरह की छोटी बड़ी दुकानें लगी थी, वहां पर अलग अलग तरह के दो चार झूले थे। रात का समय था लेकिन फिर भी वहां काफी भीड़ जमा थी। राघवेंद्र त्यागी जी को लेकर आगे निकल चुका था जबकि मानव, आरती और सुमित्रा गाड़ी से बाहर निकल रहे थे। ऐ, गाड़ी से उतरते हुए आरती बोली, मैं तो सबसे पहले खूब सारा चाट खाऊंगी और उसके बाद हम वहां से चूड़ियां लेंगे। ये हाथों में सोने के कंगन कम पड़ रहे हैं तुझे जो तू यहां पर आकर कांच की चूड़ियां खरीदेगी, सुमित्रा मुंह बनाकर बोली। अब ये मत कह दीजिएगा कि घर में खाने की कमी है क्या जो तू यहां पर खड़ी होकर चाट खाएगी, आरती ने कहा। हाँ तो गलत ही क्या है इसमें, अरे घूमना है तो बप्पा के मंदिर चलते, क्या ये मेले जैसी जगह पर आ गए, यहाँ पर अक्सर छोटे लोग आते हैं, हम जैसे खानदानी लोग नहीं। मानव को अपनी आई की बात अच्छी नहीं लगी, उसने बीच में बोला, आई ये आप कैसी बातें कर रही हैं, घूमने फिरने की जगह से कौन सा छोटा बड़ा हो गया, अगर वहिनी यहाँ पर इंजॉय करना चाहती है तो क्या दिक्कत है। चलो कोई तो मेरे पक्ष में बोला, आरती खुश होकर बोली। आई आपको पता है वहाँ विदेश में भी इस तरह के फन फेयर होते हैं जहाँ पर लोग अलग अलग तरह के करतब दिखाते हैं, मानव की बात सुनकर आरती आंखें बड़ी करके बोली, क्या सच में दादा वहाँ के लोग भी चाट खाते हैं। हाँ वहनी क्यों नहीं, वहाँ पर अलग अलग देश के स्ट्रीट फूड्स का स्टॉल लगता है, आप यकीन नहीं करेंगे वहाँ पर इंडियन स्ट्रीट फूड तक फेयर में मौजूद रहता है, मानव मेले में चलते हुए उन्हें विदेश के बारे में बता रहा था। सुमित्रा और आरती उसकी बातें हैरानी से सुन रही थीं। कुछ दूर चलने के बाद वो लोग किसी ठेले के पास जाकर रुके, वहां पर वो लोग भेलपुरी खा रहे थे तो वहीं राघवेंद्र त्यागी जी के साथ मेले में घूम रहा था। तुम्हारा गांव सच में बहुत अच्छा है राघवेंद्र, जब भी आते हैं हमारे बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं जब बाबूजी के साथ हम मेले में जाया करते थे, त्यागी जी के चेहरे पर सुकून के भाव थे, उन्हें वहां पर आकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। काश हम भी ये कह पाते कि हमारे भी बाबा हमें मेले में लेकर आते थे, राघवेंद्र ने मायूस होकर जवाब दिया। तो अब मौज मस्ती कर लो, हम भी तुम्हारे बाबा की उम्र गई हैं, मेलों में मौज मस्ती करने की उम्र बीत गई है अब। जरूरी नहीं कोई भी काम उम्र के हिसाब से किया जाए, देखा नहीं कई कई बच्चे बहुत समझदारी की बातें करते हैं तो कुछ लोग बड़े होकर भी बचपना करते हैं, चलो उस तरफ चलते हैं, बोलते हुए त्यागी जी ने एक दुकान की तरफ इशारा किया जहां पर अलग अलग तरह की चीजें रखी हुई थीं। लोग वहां पर खड़े होकर बड़ी बड़ी रिंग्स को उन चीजों पर डालने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो उन्हें जीत सकें। राघवेंद्र हल्का सा हंसा और फिर कहा, क्या त्यागी जी अब आप भी औरों की तरह साबुन तेल के लिए निशाने लगाएंगे, देखा तुम हर चीज को छोटा समझते हो, कई बार कुछ चीजें आनंद के लिए भी कर लेनी चाहिए, त्यागी जी ने कहा और उस दुकान की तरफ बढ़ गए, राघवेंद्र भी उनके पीछे पीछे आ रहा था। त्यागी जी दुकान के पास पहुंचे और एक रिंग लेकर सबसे दूर पड़ी चीज की तरफ निशाना लगाया, उनका निशाना बिल्कुल सटीक था और वो पहली बार में ही जाकर लग गया। वाह त्यागी जी आप तो पक्के खिलाड़ी निकले, सबसे दूर पड़ी चीज को भी आपने अपना बना लिया, वैसे आप बता भी दीजिए कि उस खुशबू वाले साबुन का आप करेंगे क्या। बात खुशबू वाले साबुन जीतने की नहीं है राघवेंद्र, हमने सबसे दूर पड़ी चीज की तरफ निशाना लगाया क्योंकि हम हमेशा दूर का सोचते हैं, और सही कहा खिलाड़ी तो हम पक्के वाले हैं, निशाना हमारा आज तक नहीं चूका, कहकर त्यागी जी ने एक रिंग राघवेंद्र की तरफ बढ़ाई और कहा, अब तुम्हारी बारी, हमें इस तरह के खेल तमाशे पसंद नहीं है, राघवेंद्र ने उसे लेने से मना कर दिया। एक बार कोशिश तो करके देखो, कई बार कुछ पाने के लिए तमाशे भी करने पड़ते हैं, बस यही फर्क है तुम में और यशवर्धन में, आज तुम्हारी जगह जहां पर यशवर्धन होता तो इस दुकान की ज्यादा से ज्यादा चीजें बटोर कर अपने घर लेकर जाता, हम वहां अपने हाथ पैर नहीं मारते जहां जरूरत नहीं होती, तो तुम्हें क्या लगता है यशवर्धन को इन सब चीजों की जरूरत है, लेकिन वो सब जगह अपना फायदा देखता है, उसे अपने फायदे के लिए यहाँ पर नाचना भी पड़ता तो वो तैयार रहता, त्यागी जी अलग अलग तरह के उदाहरण देकर राघवेंद्र को समझा रहे थे। क्या आज हम आपके इस ज्ञान देने का कारण जान सकते हैं, हम तुम्हें ज्ञान नहीं दे रहे बल्कि समझा रहे हैं, थोड़ी देर पहले हमने तुम्हें सख्त मना किया था कि तुम कोई भी ऐसा काम नहीं करोगे जिससे तुम्हारे और मुख्यमंत्री की कुर्सी के बीच दूरियां आए, हमारे मना करने के बावजूद तुम उस ऑटो ड्राइवर को उठाकर लाए और उसे कैद कर लिया, त्यागी जी की बात सुनकर राघवेंद्र उसकी तरफ हैरानी से देख रहा था। ऐसे मत देखो, तुम्हारे बाहर निकलने के बाद हम भी तुम्हारे पीछे बाहर आए थे और हमने वो सब देख सुन लिया जो उस वक्त हुआ था, तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, तुम पास की चीजों को पाने में इतने व्यस्त हो जाते हो कि तुम्हें दूर की चीजें दिखाई नहीं देती, जब हमने तुम्हें कहा था कि हम रिपोर्टर का मामला संभाल लेंगे फिर क्या जरूरत थी उस आदमी को उठाकर लाने की, तुम्हें इस वक्त दूर की मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं दिख रही, तुम्हें दिख रहा है तो सिर्फ यही कि रिपोर्टर की लाश को पुलिस तक किसने पहुंचाया होगा, त्यागी जी एक सांस में लंबा चौड़ा भाषण दे दिए थे। राघवेंद्र चुपचाप उनकी बातों को सुन रहा था, जब उनकी बात पूरी हो गई तब उसने धीमी आवाज में कहा, हमें भूलना नहीं आता था। जिसने भी हमारे खिलाफ कदम उठाने की कोशिश की हम उसकी टांगे तोड़कर रख देंगे, चाहे वो कोई छोटा से छोटा कीड़ा ही क्यों ना हो। राघवेंद्र ने अपनी बात खत्म की और त्यागी जी के हाथ से रिंग लेकर सबसे पास की चीज पर निशाना लगाया। उसका निशाना भी बिल्कुल सटीक था। सबसे दूर का निशाना तो आप लगा लिए, अब जरा सबसे पास वाली चीज पर निशाना लगाकर दिखाइए, उसने कहा। त्यागी जी ने वैसे ही किया और एक रिंग को सबसे पास पड़ी चीज की तरफ फेंका, लेकिन उनका निशाना चूक गया। राघवेंद्र हंसा और बोला, दूर की चीजें देखने में इतने व्यस्त मत हो जाइए कि ये भी पता ना चले कि आपके पास वाले क्या कर रहे हैं। राघवेंद्र की बात सुनकर त्यागी जी का मुंह उतर गया। उसने उनका मूड सही करने के लिए कहा, अब जाने भी दीजिए, इतनी सी बात पर आप तो नाराज ही हो गए। आप दूर का देखिए, पास का हम देख लेंगे, मिल बांट कर काम करेंगे तो सब हो जाएगा। बहुत हो गया खेल तमाशा, चलिए आपके बचपन की यादों को ताजा करते हैं, अब क्या करना चाहेंगे। त्यागी जी ने उसकी बात पर हामी भरी, बचपन में हम झूला खूब झूला करते थे, वो वाला झूला जो हमें ऊपर से नीचे ले आता है तो कभी नीचे से ऊपर। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, क्या पता कब उठाकर ऊपर से नीचे गिरा दे तो कब नीचे गिरे आदमी को आसमान पर पहुंचा दे। सच कहते हैं त्यागी जी, कभी कभी हमें लगता है कि आप खाने को भी देखते होंगे तो कहते होंगे कि इस खाने से हमें ये सीखने को मिलता है, इतना ज्ञान लाते कहाँ से हैं आप। राघवेंद्र ने हंसकर पूछा, जब तुम हमारी उम्र तक पहुंच जाओगे तब तुम्हारे पास भी बहुत सा अनुभव होगा, फिर तुम भी इसी तरह की बातें करोगे। बातें करते हुए दोनों झूले की तरफ बढ़े। वहीं आरती, सुमित्रा और मानव एक ठेले पर चाट खाने के बाद दूसरे ठेले की तरफ बढ़ गए। देव और वैद्य ही उस ठेले पर पहले से मौजूद थे। देव, क्या कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मैं स्ट्रीट फूड नहीं खाने वाली, हम पहले से ही घर से खाना खाकर चले थे, इतना खाने के बाद तुम फिर से खा भी कैसे सकते हो, भुक्कड़ कहीं के, वैदेही ने देव को रोकते हुए कहा, जो लगातार पानी पूरी खाए जा रहा था।
जल्दी जल्दी खाने की वजह से उसे खांसी आने लगी। उसे खांसते देखकर सुमित्रा ने आरती से कहा, लगता है इसने भी तुम्हारी तरह कई जन्मों से खाना नहीं खाया, जो बुरी तरह ठूसे खा रहा है। सुमित्रा की बात सुनकर वैदेही उसकी तरफ पलटी, उसे देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। क्या गलत कह दिया जो ऐसे बटन आंखें दिखाकर जैसी करके घूर रही हो, सुमित्रा ने उसे डांटकर बोला। उसने उसे पहचाना नहीं। वैदेही ने जल्दी से खुद को सामान्य किया। बुरा मत मानिएगा, आई को जल्दी जल्दी खाना खाना पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने आपको टोक दिया, मानव ने कहा। तो क्या गलत कह दिया, इसके मर्द को कुछ बोला तो इसकी औरत भी कैसे आंखें फाड़ कर देख रही थी, जैसे अभी खा जाएगी, सुमित्रा ने रूखे स्वर में जवाब दिया। उन लोगों से छिपने के लिए वैदेही उनकी तरफ पीट करके खड़ी हो गई। जगह ना होने की वजह से आरती सुमित्रा के पास से खिसक कर वैदेही की तरफ आ गई। वैदेही पर नजर पड़ते ही वो चिल्लाकर बोली, अरे ये तो वही है, मैंने तुम्हें पहचान लिया। कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं, वैदेही अटकते हुए बोला। अरे ऐसे कैसे नहीं पहचाना, आरती ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखे और कहा, मुझे अच्छे से याद है तुम हमारे घर पर आई थी, आई जिस दिन मानव दादा आए थे और हमारे घर पर भोज का आयोजन किया गया था, तब ये हमारे घर पर आई थी खाना खाने के लिए, इतनी जल्दी भूल गई, मुझे अच्छे से याद है, इसने खाना परोसने में मदद भी की थी। क्या नाम है तुम्हारा, याद नहीं आ रहा? आरती की बात सुनकर वैदेही ने राहत की सांस ली। उसने बात संभालते हुए कहा, अरे हाँ याद आया, मैं तो भूल ही गई थी वहिनी, मैं विद्या, हाँ विद्या सावंत, आरती उसकी बात को दोहराते हुए बोली। कैसी हो तुम, उस दिन के बाद तो दिखाई ही नहीं दी। इसका बस चले तो गली मोहल्ले की औरतों को खड़े करके उनसे घंटों बातें करे और ऐसे ही समय को बर्बाद करे, अब देखो इसके साथ भी शुरू हो गई, ना जान ना पहचान, बस बन गई इसकी मेहमान, सुमित्रा बड़बड़ाते हुए बोली। जी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब हमें देर हो रही है, देव जी अब हमें चलना चाहिए, वैदेही ने उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश की। अगर वो लोग ज्यादा देर बात करते तो उन्हें उसे पहचानते देर नहीं लगती, वैसे भी मानव काफी देर से वैदेही की तरफ गौर से देख रहा था। हाँ हाँ विद्या जी चलिए, सुबह काम पर भी जाना है, देखिए रात के 9 बज गए हैं, देव उसका हाथ पकड़कर वहां से ले जाने लगा। रुकिए, मानव ने पीछे से आवाज लगाकर कहा। उनकी आवाज सुनकर वो दोनों वहीं रुक गए। मानव उनके पास जाकर बोला, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैंने आपको देखा है, आपकी आवाज भी कुछ सुनी हुई सी लग रही है। मैंने बताया था ना आपको कि जिस दिन आप आए थे और भोज हुआ था तब मैं आपके घर आई थी, बस उसी वक्त देखा होगा, वैदेही ने आवाज को थोड़ा बदलकर कहा ताकि मानव को शक ना हो। वो आगे कुछ पूछ पाता उससे पहले सुमित्रा ने उसे आवाज दी, तो उसे वहां से जाना पड़ा। उसके जाते ही वैदेही ने धीमी आवाज में कहा, अच्छा हुआ जो मैं विद्या का गेटअप लेकर आई थी, वरना इन लोगों को पहचानते देर नहीं लगती, इससे पहले कि ये लोग फिर से हमारे पास आए हमें यहाँ से चलना चाहिए। सही कहा वैदेही मैम, जान बची तो लाखों पाए। देव वैदेही के साथ तेजी से चलते हुए बाहर की तरफ पड़ रहा था। कितनी बार कहा है विद्या बुलाया करो, वैदेही ने कहा। वैदेही देव के साथ जल्दी जल्दी चलते हुए बाहर आ रही थी। हड़बड़ाहट में वो सामने से आ रहे राघवेंद्र से जा टकराए।